का साक्षात्कार इससे बड़ी चीज है। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज में मिलना कठिन नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जा सकता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। ओम अज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके आशीर्वचन की याचना करता हूँ जिससे मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। भगवान और उनके भक्त, इन दोनों का बीच में का जो आदान प्रदान है उसकी यहाँ पर हमें थोड़ी झलक प्राप्त होती। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में मालिक और सेवक, उनके बीच में का आदान प्रदान शोषण का होता है। मालिक कम से कम उसको वेतन देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहता है और जो सेवक है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेतन लेकर कम काम करना चाहता है। और दोनों ही एक दूसरे को फंसाने में लगे रहते और उन्हें उसमें ही आनंद प्राप्त होता। हालांकि ऊपर से वो दिखाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उनका भाव वही रहता है। तो ये भाव से हम इस भौतिक जगत में पूरी तरह से परिचित है। तो उस कभी कभी इस भाव को हम भगवान के ऊपर भी लगा सकते दुर्भाग्यवश। तो लोग सोचते कि भगवान भी ऐसी ही व्यक्ति है जिनकी मैं थोड़ी सी भक्ति करूंगा और मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसा सोचकर अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान क्या बोलते हैं, तुम अगर मूर्ख हो लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। तुम भले ही थोड़ा भक्ति करके विष मांगोगे लेकिन मैं तुम्हें विष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खुद के चरणों का अमृत दूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति आराधना करता है, तो अगर वो देवी देवताओं का करता है तो उसमें और भौतिक जगत में कुछ अंतर नहीं रहता। वो लोग भी वैसे ही, जितना आप भक्ति करें, जितना आप उनकी अर्चना करेंगे उतना ही वो आपको फल देंगे। लेकिन विशेष करके अगर कोई भगवान की भक्ति करता है किसी भी भाव से, उसे शुद्धता ही प्राप्त होती है। भगवान उसको शुद्ध करेंगे, कभी कभी उसे देकर शुद्ध करेंगे, कभी कभी उसको न देकर, जो मांग रहा है वो देकर कभी शुद्ध करेंगे और कभी कभी उसे जो मांगा है वो नहीं देके शुद्ध करेंगे। जैसा हम देखते ध्रुव महाराज ने अपने दादा परदादा से ज्यादा उनको जगह चाहिए थी या राज्य चाहिए था, तो इस भाव से उन्होंने भगवान की भक्ति की। लेकिन उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया, प्राप्त हुआ, तो उन्हें इस भौतिक वासनाओं का बिल्कुल तनिक भी विकार उनके अंदर नहीं रहा। फिर भी भगवान ने उनको बोला कि आप 36,000 साल अभी राज्य कीजिए। हालांकि उनके अंदर से कुछ भी भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको भगवान ने वो सेवा दी। तो उस समय कभी कभी वो जो भोगविलास मिलता है वो भक्त के लिए एक शुद्धिकरण ही होता है, उसे उसमें बिल्कुल रुचि नहीं होती, लेकिन उसे वो कभी कभी करना पड़ता। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की शुद्धि करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य है अगर हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो। तो भागवत में ऐसे बोला है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहर तीव्रेण भक्ति योगेन यजते ही पुरुषम पर। अगर किसी के अंदर भौतिक काम वासना है या बिल्कुल काम नहीं है, काम वासना नहीं, फिर भी उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कैसी भक्ति करनी चाहिए? पूरी तीव्रता के साथ। तो हमें जो भी हम भगवान की सेवा लग रहे हैं उसमें हमें थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं रहना चाहिए, पूरा उसमें हमें झोंक खुद को नौछार करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग जो चीज नश्वर है उसके ऊपर अपना जीवन नौछार कर देते। कोई कोई व्यक्ति है एक सिर्फ घास का तिनका उसके अंदर क्या है, उसका PhD करने के लिए 20-30 साल लगा देते, और वो घास का तिनका ऐसे ही गधे खाते रहते दिन भर। उन्हें तो कुछ पढ़ी नहीं, उसके लिए उनको PhD नहीं करना पड़ता, खाना है कि नहीं है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन के 20 साल सिर्फ वो घास कैसा बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है उसके ऊपर खर्च करते। तो ऐसे बहुत सारे उपलब्धियों के ऊपर लोग अपना समय पूरा न्योछार करते, जीवन न्योछार करते, और उनको कुछ मिलता भी नहीं। लोग उनको स्मरण करेंगे लेकिन कितना साल, उनका नोट के ऊपर भी उनका प्रतिमा रहेगा लेकिन वो कितना साल चलेगा। जब नोट बदल जाता है तो सब वो भी छोड़ देते हैं, लोग कुछ उसका वैल्यू नहीं करते। तो इस प्रकार हम भौतिक कार्यकलाप में कितना भी प्रगत बनने का प्रयास करें, उसका जो अंतिम निष्कर्ष है वो सदैव निष्फल ही होता है। लेकिन भगवान की भक्ति ये ऐसी चीज है, उसमें हम थोड़ा भी कुछ करेंगे तो भी भगवान हमें बहुत कुछ दे सकते। और जो भगवान की भक्ति हम थोड़ी बहुत करते हैं उसका कभी भी ह्रास नहीं होता। तो भगवद्गीता में बोला गया है, नेहाभिक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महत्व। अगर हम थोड़े भी भक्ति करते हैं तो भगवान हमें बड़े से बड़े मुश्किल से हमें बचाते देते। और भौतिक जगत में अगर हम बड़ा भी कुछ करते हैं थोड़े से मुश्किल से भी लोग खत्म हो जाते। ये छोटा सा वायरस है, उसको ना देख सकते ना कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रगत देश है भारत, मीन्स ये पृथ्वी तल पे, लेकिन वो लोग भी उसे कुछ नहीं कर सकते। तो उनका विज्ञान पूरा हदबल हो गए एक छोटे से जीव से। तो ये भगवान की ताकत है, उन्हें उनको सिखाने के लिए कुछ बड़ा कुछ करना नहीं पड़ता। ये छोटा सा वायरस से भी परास्त हो जाते, उनकी पूरी इतनी जो कामयाबी है, इतना बड़ा जो गर्व है, वो सब हरन जाते। तो भगवान किसी को भी नम्र कर सकते। तो इसलिए हमें हमारी जो काबिलियत नहीं है उसके ऊपर स्वांग करके इतना गर्विष्ठ बनने का बिल्कुल जरूरत नहीं। हमें नम्र बनना रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई करेगा तो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका वो स्वभाव। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को बोला गया है अपवर्ग, है ना। तो भगवान की जो भक्ति करता है उसे वो अपवर्ग में गिना जाता है। तो ये अपवर्ग है क्या? तो ये अपवर्ग है पवर्ग का विरुद्ध। जो अ लगाने से क्या होता है, जैसे नाथ और अनाथ, माने जिसे नाथ नहीं है वो अनाथ हो जाता है। तो उसी प्रकार ये अ का मतलब है पवर्ग से परे। तो पवर्ग का मतलब प्रभुपाद जी अनेक जगह पर बताते हैं। तो पवर्ग जो है, तो जो देवनागरी लिपि है उसमें वर्ग होते, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, क वर्ग। तो उसमें ये प वर्ग है जिसमें 5 व्यंजन है, प, फ, ब, भ और म। तो प्रभुपाद जी इसका विश्लेषण देते हैं। तो प के बारे में प्रभुपाद जी 2 चीजें बताते हैं, एक है पराभव, दूसरा है परिश्रम। तो प्रभुपाद जी बताते हैं प से पराभव है। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग इतनी इतनी कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, वो पराभव हो जाता है। हालांकि वो पूरा पूरे भारत को पूरा जग को जग के सिकंदर बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, पराभव हो जाता है। तो जो अलेक्जेंडर था उसने बोला कि मरते समय मेरे हाथ दोनों खुले छोड़ के मुझे दफनाने के लिए लेके जाओ। तो आप सोचेंगे कि ऐसे क्यों बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हालांकि मैं अभी पूरा दुनिया का सम्राट हूं, लेकिन जब मैं मेरी मृत्यु हो जाती है तब मेरे साथ एक रुपए भी एक कौड़ी भी मेरे साथ नहीं आई, मैं खाली हाथ जाऊंगा। तो इस प्रकार से पराक्रम स्थापित करके उसका कुछ लाभ नहीं। अगर आप उससे का फल निष्फल होने वाला है तो उसके लिए इतना प्रयास करने की कुछ आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो गणित है उसमें अगर बहुत बड़ी संख्या है और उसको आपने शून्य से अगर उसका गुणाकार किया तो आखिर क्या में आता है, उसका शून्य आता है। आपकी पहली संख्या कितनी बड़ी हो जाए लेकिन आप उसको शून्य से अगर उसका गुणाकार करेंगे तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसी प्रकार हमारे पास कितना भी कुछ ऐश्वर्य संपत्ति यौवन धन ये सब चीज रहे लेकिन जब मृत्यु आ जाती है तो कुछ काम की नहीं रहती, वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं आती। तो ये सबसे बड़ा पराभव है मनुष्य के जीवन में। तो उसकी जो हर कार्य है, हर जो उसका चेष्टा है, उसका नतीजा क्या है, पराभव ही। हालांकि वो उसको लग रहा है कि मैं सफल हो रहा हूँ, मुझे ये अवार्ड मिल रहा है वो अवार्ड मिल रहा है, लेकिन उसको मृत्यु के समय ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसमें और जिसको नहीं मिला है उसमें कुछ अंतर ही नहीं। इतना आप कष्ट कर इतना कुछ हासिल किए और आपका भी अंतिम जो आपके साथ आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके साथ भी कुछ भी नहीं, तो दोनों समान ही गिने जा रहे हैं। तो इसलिए इतना प्रयास करना लाभप्रद नहीं है। तो ये प का पहला व्याख्या है, प्रभुपाद जी बता रहे कि ये पराभव। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद अगर हम भौतिक प्राणी के जैसा व्यवहार करेंगे तो वो असली मनुष्य देह का पराभव है। जिस देह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उस देह का हम भक्ति में लगाने का छोड़कर जो प्राणी मात्र इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे उनके जैसा अगर हम हमारा इंद्रिय भोग में जो मनुष्य देह है जो दुर्लभ है उसको लगाएंगे तो वो क्या है, ये मनुष्य देह का पराभव है। जैसा समझो किसी को मर्सिडीज बेंज मिला है जो 200 या 150 किलोमीटर से भाग सकते, उस गाड़ी को लेकर अगर कोई अपना खेत जोतने लगा तो वो क्या है, वो गाड़ी की पराभव होता है। इतना गाड़ी अच्छा होकर भी उसको ट्रैक्टर जैसा यूज करेगा तो उसका वो गाड़ी का पराभव। उसी प्रकार हमें जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है जिससे हम भगवत धाम को हासिल कर सकते हैं, वो छोड़कर अगर हम नरक की तरफ गमन करेंगे तो हमारा जीवन पशुतुल्य, और वो सबसे बड़ा पराभव है मनुष्य जीवन का। तो इसलिए हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं प का मतलब है परिश्रम। तो व्यक्ति बहुत कठोर परिश्रम करता है, सादी सादी छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो बहुत परिश्रम करता है। हालांकि हर एक व्यक्ति का आहार कितना रहेगा, 4 चपाती थोड़ा सा राइस और थोड़ा सा दाल। अगर वो गरीब व्यक्ति भी कमा कर उतना ही खाता है और अमीर व्यक्ति भी 24 घंटा काम करके भी वही उतना ही खा रहा है, तो इतना सा खाने के लिए इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता। अगर आप सोने के लिए आपको 6 फीट जगह लगता है तो बड़ा बंगला करके उसमें 50 रूम रहेंगे तभी आप एक ही रूम में सो पाएंगे, और एक ही रूम में कितना जगह पर 6 फीट भी सो पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास 50 रूम है तो 50 रूम में जाकर आपके 50 रूप बनकर आप सोएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कितना बड़ा घर हो, कितना भी ऐश्वर्य रहे, जितना हमें भोग करने की अनुमति है उतना ही हम भोग कर पाएंगे। हालांकि हमारे पास बहुत सारा रहेगा, कभी कभी ऐसा रहता है कि लोगों के पास बहुत कुछ रहता है तब वो कुछ खा नहीं पाते, तब तक उनको डायबिटीज आ जाता है। बचपन में खा नहीं सकते क्योंकि गरीब थे, फिर गरीबी से कष्ट कर करके अमीर बन गए, और अमीर बनने के बाद क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, और फिर उसको जैसा पहले था हालत वैसा ही खाना पड़ता। तो इतना कष्ट कर वही खाना था तो इतना कष्ट क्यों किया। तो ऐसा कभी सोच जो विज्ञान मनुष्य है वो सोचता है कि मैं कष्ट क्यों करूं, तो ये कष्ट हमें नहीं करना चाहिए, ये परिश्रम। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, निताय गौर सुंदर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो ऐसा परिश्रम में हमें हमारा समय व्यय नहीं करना है। और दूसरा क्या है, ब का मतलब प्रभुपाद जी दो बताते, एक है व्यर्थता, डिसअपॉइंटमेंट, माने डिसअपॉइंटमेंट, हताश, निराशा। और दूसरा ब का अर्थ मतलब है बंधन। तो पराभव से क्या आता है, हताशा आ जाती कि मैं इतना कष्ट कर कर मेरे साथ कुछ नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ा निराशा है व्यक्ति का। सबसे बड़ा क्या है, उसके साथ जोक हो गए, इतना वो तेजी से भाग रहा है और आगे जाके देखता है कि क्या है, द एंड। तो फिर वो बोल रहा है इतना क्यों भागा मैं, इतने जोर से भाग, द एंड को ही जाना था तो क्यों भाग लें। तो प्रभुपाद जी बताते थे इंग्लैंड इतना छोटा सा देश है और लोग इतने जोर से गाड़ी चलाते, थोड़ा भी जोर से चलाएंगे तो क्या होगा, वो समुद्र में जाके गिर जाएंगे। तो इतना फास्ट चलाने का कुछ जरूरत नहीं। तो अगर, और एक उदाहरण है कि अगर कोई ट्रैफिक के सब नियमों का पालन कर रहा है लेकिन उसको कहाँ जाना है वही पता नहीं है, तो कितना भले 100 साल भी नियम पालन करे लेकिन उसको कहाँ जाना है वही पता नहीं है, तो वो नियमों का पालन करने का कुछ फायदा नहीं। तो इस प्रकार व्यक्ति पराभव से हताश हो जाते है ना। और दूसरा परिश्रम करने से क्या हो जाता है, उसके अंदर बंधन आ जाता है। जैसा अगर समझो किसी ने एक गाड़ी खरीद ली, तो वो गाड़ी उसके खरीदी उसने, लेकिन वो गाड़ी उसके मन में थोड़ा सा जगह ले लेता है। अभी घर भी बैठा रहेगा, उसको गाड़ी के ऊपर कोई इसने खर्च मार दिया, तो इसको इतना दुख हो जाता है कि वो उस व्यक्ति को पिटाई करने के लिए तैयार हो जाता, हालांकि उसको कुछ नहीं किया, वो गाड़ी को ही थोड़ा किसी ने स्क्रैच किया। तो लोग कितना झगड़ा करते रस्ते के अंदर। तो इस प्रकार से हम बंधन आ जाता है हमारे अंदर, ये चीजों का जो भी हम जब इकट्ठा करते हैं उसका हमें बंधन आ जाता है। हालांकि कुछ समय पहले वो गाड़ी कंपनी वाले ने बनाई थी और शोरूम में रखी थी, लेकिन हमारा उसके साथ कुछ संबंध नहीं था। उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके ऊपर कोई पत्थर मारे, तो भी हमें कुछ लगता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चाबी हमारे हाथ में आ जाती तो उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा संपत्ति, ऐसा हमें लगता। उसी प्रकार हम थोड़ा सा जगह लेते हैं या कुछ धन लेते हैं, कुछ कपड़े लेते हैं, तब हमारे हाथ में आ जाते तो हमें उसके साथ कुछ होने नहीं चाहिए, ऐसा हम सोचते। जैसे हमारे शरीर के ऊपर बाल है, सिर के ऊपर बाल है, जब तक हमारे साथ है तब तक उसको हम सवार दे रहे थे, लेकिन जब एक बार काट देंगे तो कहाँ जाते हैं हम सोचते भी नहीं उसके बाल। तो इस प्रकार हम जब तक हमारे साथ किसी को बंधन में ला देते तो वो हमें सुख या दुख देते ही रहेगा। तो ये है ब का मतलब बंधन। और तीसरा है फ, तो फ का जो व्याख्या दी गई है वो है फेन। फेन माने मुंह से झाग आना। जैसा हम देखते घोड़ा है ना, उसको कभी कभी मालिक लोग बहुत चलाते, उसे खाने भी नहीं देते, और उस समय उसके मुंह से फोम आने लगता है। जैसा हम गए थे गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ, तो वहां पर खेचर रहता है, तो वो मालिक लोग क्या करते हैं, उसको खिलाते नहीं, उसको भाड़े पे दे देते दूसरे लोग, और चलाने वाला व्यक्ति भी उसको खिलाता नहीं, उसको लगता है कि मालिक नहीं खिलाया, तो मालिक को लगता है वो लेके जाने वाला व्यक्ति खिलाएगा, और लेके जाने वाले व्यक्ति को लगता है कि मालिक नहीं खिलाया, और पैसेंजर को लगता है कि ये ऑलरेडी खिलाया होगा। इस प्रकार वो खेचर अगर भूखा रहा और उसके ऊपर कोई बैठा, तो वो बैठने के बाद वो खेचर भी बैठ जाते और उसके मुंह से पूरा छाक निकलता, तो ऐसे समय उस पर कोई चल नहीं सकता। तो उसी प्रकार भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग इतना कष्ट करते, इतना कष्ट करते कि हालांकि मुंह से झाग नहीं आता, लेकिन वो लोग उससे परेशान हो जाते, वो कार्य से किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में शुक्रवार जब आता है तो सबके चेहरे एकदम खिल जाते, क्योंकि उनको पता है कि अभी हमने 2 दिन छुट्टी मिले। तो 2 दिन छुट्टी क्यों मिलती है उनको, क्योंकि इतना उनको निचोड़ा जाता है कि एक दिन से वो गीले नहीं हो जाएंगे, इसलिए उनको 2 दिन छोड़ा जाता है। बाद में फिर से उनको फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक पूरी तरह से उनको निचोड़ा जाता। तो इस प्रकार ये जो मुंह में छा जाते हैं, इतना हम कष्ट करते हैं, लेकिन ये जो पराभव की तरफ लेके जाने वाले चीज के लिए हम इतना कष्ट कर रहे, तो इसे हमें बचना चाहिए। और तीसरा है, चौथा है भ। तो भ का मतलब प्रभुपाद जी व्याख्या देते हैं भय। तो हमें इतना परिश्रम कर कर, इतना हम उसे बनने के बाद, इतना मुंह से छा गाने के बाद जो चीज हमें प्राप्त हुई, तो हमें लगता है कि वो मेरे से चली ना जाए, तो इसलिए हमें उसका क्या लगता है, पूरा भय लगता है। फिर लोग उसको संरक्षण देने के लिए अथक परिश्रम करते। तो ये जो भय है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाकी लोग मेरे से द्वेष करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उससे उसलिए उनके ऊपर बहुत भय रहता है। हालांकि कोई बड़ा नेता रहता है, लेकिन उसको सुरक्षा के लिए इतना सारा व्यवस्था करना पड़ता है, तो सामान्य व्यक्ति जैसा वो चल नहीं सकता। हाँ, इतना बड़ा उसे पदवी प्राप्त हुआ है कि उसे, क्योंकि उन्हें भय है कि कोई मुझे मार दे, लेकिन गरीब व्यक्ति को कुछ भय नहीं रहता, वो ऐसे ही चलते रहते। तो ये इस प्रकार से हम जब बहुत सारा जमा करते हैं, तो उसको संभालने के लिए भी हमें बहुत कष्ट करना पड़ेगा, और वो हमारे साथ रहेगा कि नहीं, इसका सदैव हमें भय रहता है। और सबसे आखिरी है म। तो म का मतलब है मृत्यु। तो मृत्यु जब आती है, तो ये सब हमने जो किया है वो शून्य हो जाता, उसका कुछ मतलब नहीं रहता। तो मृत्यु से सबको नम्र बना जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा नम्र बनने का जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से भगवान की शरण लेकर नम्रता स्वीकार करेंगे, तो ऐसा हम बुरी तरह से नम्र नहीं बन जाएंगे। तो ये मृत्यु जो है, वो सबसे बड़ी हमारे ऊपर एक माया का थप्पड़ है कि तुम कितना भी नाचो, लेकिन जब मृत्यु आती है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। आप बड़े राजा हो या बड़े वैज्ञानिक हो या कुछ भी हो, मृत्यु के समय सब हार जाते। तो ये चीज है भौतिक जगत का रूप जो पवर्ग से भरा, ऐसे कष्टों से लोग अपना जीवन यापन कर रहे। तो हमें ये चीज से बाहर आना है। तो भगवान की जो भक्ति है, उसे बोला गया है अपवर्ग। तो भगवान के जो भक्ति है, वो इससे पूरी उल्टी है। तो अगर हम भगवान के लिए कष्ट करेंगे, तो कभी भी हम हताश नहीं होंगे। और भगवान के ऊपर अगर हम कष्ट करेंगे, तो हमारे सब जो बंधन है, वो सब भगवान निकाल देंगे, क्योंकि भगवान ही मुक्त है। बाकी कोई मुक्त नहीं जो हमें बंधन से निकाल पाएगा। वो व्यक्ति बंधे हुए, वो दूसरे को क्या मुक्त करेंगे, लेकिन भगवान ऐसे मुक्त है जो हमको इस बंधनों से मुक्त कर सकते। तो ऐसे भगवान का अगर हम आश्रय लेंगे। और तीसरा है, चौथा है भय। तो भगवान की भक्ति करने से कोई भी भयभीत नहीं होगा। जैसे प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, त्रस्तोस्मे हम कृपण वत्सल दुस्रोह संसार चक्र कनद कदनाद ग्रसताम प्रणीत बद्ध स्वकर्माभिरुषत्तम ते अंग्रि मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वसे कदानु। तो ये भागवतम के सातवें स्कंद का नवे अध्याय का 16वां श्लोक है। इसका मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में हिंदी में बताता। ओ मोस्ट पावरफुल इनसरमाउंटेबल लॉर्ड हु आर काइंड टू फॉलन सोल्स, आई हैव बीन पुट इनटू द एसोसिएशन ऑफ डीमंस एज अ रिजल्ट ऑफ माय एक्टिविटीज एंड देयरफॉर आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ माय कंडीशनल लाइफ विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। व्हेन विल दैट मोमेंट कम व्हेन यू विल कॉल मी टू द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट व्हिच आर द अल्टीमेट गोल फॉर लिबरेशन फ्रॉम कंडीशनल लाइफ। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं इतने बुरी अवस्था से जकड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरे जो संगी है वो सब क्या है, असुर लोग हैं, और इसलिए मुझे बहुत ही भौतिक जीवन के डर लग रहा है। तो मैं आपको इतने प्रेम से पुकार रहा हूँ, और मुझे आपके चरणों की शरण दीजिए जो सबसे बड़े आशा के स्थान है एक बद्ध जीवात्मा के लिए। तो भगवान का जो संघ है, वो हमारे लिए बड़ी आशा है। तो इसे हम भय से बाहर आ सकते। और एक श्लोक है भागवत में, शोक मोह भयापा एशाम, हाउ इट स्टार्ट्स, शोक। तो भगवान के अगर हम गुणगान गाएंगे तो हम ये जो भौतिक जगत का शोक मोह और भय ये तीनों चीज ऐसा हम वह श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति देश शोक मोह भय। तो ये चीज अगर हम करेंगे भगवान की भक्ति करेंगे तो हम शोक और मोह और भय से परे हो सकते। अन्यथा इस भौतिक जगत का संसार इतना डरावना है आप कुछ भी हासिल करो आपको सुरक्षा बिल्कुल मिलने वाली नहीं। तो ये भय से हम बाहर निकलेंगे। और पांचवा जो मृत्यु है ये मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो तभी हमें ये शक्य है भौतिक जगत के जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकल सकते। तो ये सबसे बड़ा लाभ भगवान के भक्ति करने से। तो और एक भागवतम का श्लोक है सताम प्रसंगाम अम्बे समन्तो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कला तज्जोशनाद अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो इसमें बोला गया है कि भगवान की भक्ति हम जब भक्तों के साथ में आते हैं और भगवान की कथा का गुणगान श्रवण करते हैं तब हम ये अपवर्ग को हासिल कर सकते और तब हमारे अंदर श्रद्धा व्रति और भक्ति इस प्रकार से हमारा आगे भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत की तरफ हम अनुगमन करते। तो ये भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा लाभ है। और एक जगह पर बताया गया है धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभ ही स्मृत। तो इसमें बोला गया है कि सब धर्म का लक्ष्य क्या है अपवर्गस्य। तो हमें भगवान की भक्ति ही मिलना चाहिए ये सब धर्म का लक्ष्य है। और ऐसी भक्ति करते समय हमें इंद्रिय तृप्ति को त्यागना चाहिए। काम और भक्ति ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। जैसा एक बोट उत्तर की तरफ जा रहा है और दूसरा बोट दक्षिण की तरफ जा रहा है तो हम दोनों बोट में पैर रखेंगे तो क्या होगा हम बीच में गिर जाएंगे। इस तरह काम वासना हमें नर की तरफ लेके जाएगा और भगवत भक्ति भगवान की धाम की तरफ लेके जाएगा तो हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो हमें काम वासना को त्याग कर भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम असली लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है वो है भगवान की प्रसन्नता। यहाँ पर भगवान प्रचेताओं को बोले कि बताओ क्या वर चाहिए आपको। तो भौतिकवादी व्यक्ति रहता तो वो तो भौतिक चीज ही मांगता था मुझे ये दे दो वो दे दो। लेकिन यहाँ पर शुद्ध भक्त क्या मांग रहे वो खुद का खुशी भी नहीं मांग रहे। वो क्या बोल रहे भगवान मुझे ऐसा हमारा ऐसा कार्यकलाप रहे जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। तो भक्त का चिंतन क्या रहता है कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान की प्रसन्नता ही उसके लिए सबसे बड़ा आशा है और यही कार्य करने के लिए वो सदैव कार्यरत रहता है। तो ये भक्तों का लक्षण है वो खुद की इंद्रिय तृप्ति को लगे नहीं रहते वो भगवान की ही इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते और उसी को ही भगवान की भक्ति बोला गया है। तो ये प्रचेताओं का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रार्थना है कि भगवान आपको अगर आशीर्वाद देना है तो आप सिर्फ हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए और आपकी प्रसन्नता के सिवा और कुछ हमें चाहिए नहीं। तो ये भगवान के भक्तों की असली पहचान वो हर समय भगवान को प्रसन्न देखना चाहते। जैसा कोई अर्च विग्रहों की सेवा कर रहा है या कुछ भगवान के लिए कर रहा है तो सबसे बड़ा उसका परिपूर्णता क्या है या वर्णाश्रम का फॉलो कर रहा है समसिद्धि हरितोष्ण। अगर हरि प्रसन्न हो जाएंगे तो ही हमारा सब कार्यों का लाभ है। अन्यथा अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो हम कितना भी अच्छा करें वो कुछ अच्छा नहीं होता। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता ही भक्तों के लिए सबसे बड़ा मापदंड है जिसको वो हर समय टटोलता रहता है कि भगवान मैं इस चीज करने से प्रसन्न होंगे कि नहीं। तो इसलिए भगवान का भक्त क्या बोल रहा हूँ ये भगवान को प्रसन्न करेगा कि नहीं ये विचार करेगा। मैं कैसा वर्ताव कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं ये सोचेगा। तो हर कार्यकलाप करते समय वो भगवान की प्रसन्नता को प्राधान्यता देगा और इसीलिए वो हर समय अच्छे से अच्छे प्रकार से वो व्यवहार करेगा। तो अगर ऐसा कोई करेगा तो वो सबसे बड़ा भगवान का भक्त बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रचेता जो इन्होंने इतनी तपस्या की, भगवान उनको उनके ऊपर इतने प्रसन्न हुए और भगवान उन्हें बोल रहे कि मुझसे कुछ वर मांगो। तो ये प्रचेता लोग भगवान से कुछ भी भौतिक नहीं मांग रहे, लेकिन वो क्या बोल रहे, भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हम आपको ही प्रसन्न कर पाए। तो यही भाव सब वैष्णवों के अंदर हमें मिलता है। तो तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में यही भाव रखते हुए प्रार्थना करते हैं। तो मैं वो अभंग लेता हूँ और उसके बाद प्रवचन को विराम देता हूँ। तो तुकाराम महाराज भी यहाँ पर बोल रहे हैं, हे ची माझे तप, हे ची माझे दान, हे ची अनुष्ठान नाम तुझे। तो तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि मेरी तपस्या यही है और मेरा दान यही है कि जिससे आपके नाम का अनुष्ठान हो जाए, आपका नाम का प्रचार हो जाए। हे ची माझे तीर्थ, हे ची माझे व्रत, सत्य हे सुकृत नाम तुझे। तो भगवान आपका नाम ही मेरा क्या है, तीर्थ है, आपका नाम ही मेरा व्रत है और यही सबसे बड़ी सत्य है और यही सबसे बड़ी अच्छी कार्य है। हे ची माझे कर्म, हा ची माझा धर्म, हा ची नित्य नेम नाम तुझे। और मेरा जो कार्य है और मेरा जो धर्म है वो सब क्या है, आपका ही नाम है। और जब जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सिर्फ आपका नाम ही है। हा ची माझा योग, हा ची माझा यज्ञ, हे ची तप ध्यान नाम तुझे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान आपकी जो आपका जो नाम है वही मेरे लिए सबसे बड़ा योग है और वही मेरा बड़ा यज्ञ है और वही मेरा तप और ध्यान है। हा ची कुळाचार, हा ची कुळ धर्म, हा ची नित्य नेम नाम तुझे। तो तुकाराम महाराज बोल रहे आपका नाम ही मेरा कुल का आचार है, आपका ही नाम मेरा कुल का धर्म है और यही मेरे लिए सदैव नियम है, मेरे लिए यही बड़ा नियम है। हा माझा आचार, हा माझा विचार, हा माझा निर्धार नाम तुझे। यही मेरी आचार है, ऐसा ही मैं बर्ताव करूंगा और ऐसा ही मेरा निर्धार है और ऐसी मेरी सोच है, सिर्फ आपका नाम। तो भगवान का नाम के बारे में इतना यहाँ पर तुकाराम महाराज गुणगान करते और तुकाराम महाराज बोलते हैं आखिर में, तुका मने दुजे सांगा यसी नाही, नाम बिना काही धन वित्त। तो तुकाराम महाराज बोल रहे हैं नाम के अलावा इस दुनिया में और कुछ धन संपत्ति हमें चाहिए नहीं। तो हमारे लिए सब कुछ क्या है, भगवान का नाम। तो ये भगवान का नाम हमें, भगवान का धाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब के लिए हमें लेके जाने वाला ये भगवान का शुद्ध नाम है। तो इस प्रकार अगर हम भगवान के नाम में लगे रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ये भौतिक वासनाओं से हम दूर हो जाएं और हमें बिल्कुल इस भौतिक जगत में रस नहीं रहेगा। और इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम ये सबसे बड़ा जो पवर्ग है इससे हम बच जाएंगे, जो हम इतने जन्मों से परिश्रम कर रहे, कष्ट भुगत रहे और निराश बन रहे, बंधन में जकड़े जा रहे और भय से पीड़ित है और मृत्यु हमें हर जन्म में प्राप्त हो रही। तो ये वारंवार जो जन्म मृत्यु का चक्र है जो इतना मुश्किल है जिससे बाहर निकलना, वो चक्र हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं अगर हम भगवान के नामों का आश्रय लें। तो यहाँ पर प्रचेताओं ने भगवान की जो गुणगान है, जो उनको शिवजी से प्राप्त हुए, उस नाम को जप कर उन्हें भगवान का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हमें श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है इस संस्था में। अगर इस मंत्र का अगर हम पूरी गंभीरता से आश्रय लेंगे तो हम भी ये जो पवर्ग है इससे बाहर निकलकर भगवान के जो शाश्वत धाम है और जहाँ पर हम भय और सब ये जो पांच विकार है इनसे परे होकर भगवान की प्रेम में सेवा में अच्छे से लग जाएंगे तो हमें आनंद ही प्राप्त होगा। और यही भगवान के भक्तों की आशा है कि भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का नाम लेकर भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के लिए सेवा कर भगवान को प्रसन्न करना। अगर इस तरह अगर हम हमारा जीवन बिताते हैं तो अवश्य ही हमें ये जो लाभ प्रचेताओं को प्राप्त हुआ वो लाभ भी हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भक्ति में हम दृढ़ता से लगे रहेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त करते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा इज नोन एज अनपवर्ग वीर्य फॉर ही शोज द पाथ टू द स्पिरिचुअल। तो भगवान ही अपवर्ग है, तो उनका अगर हम शरण लेंगे तो हमें भगवान का धाम प्राप्त हो। और वो धाम प्राप्त करने के लिए हमें बहुत इंतजार नहीं करना, इसी जीवन में हमें वो धाम प्राप्त हो जाएगा। अगर हम अच्छी चेतना में भगवान की सेवा करते हैं तो हमें बिल्कुल मृत्यु का डर नहीं रहे। हालांकि भौतिक जगत में सब लोग मृत्यु से डर रहे, लेकिन भक्त जो है वो मृत्यु से बिल्कुल डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु क्या है, एक स्टेपिंग स्टोन है भगवत धाम जाने का। तो इसलिए जो भगवान के भक्त है कभी भी अपना शरीर तो बूढ़ा होने वाला है, वो कुछ तो कुछ हमें पूछ के तो नहीं होने वाला, तो ये शरीर तो हमारे हाथ से छूट रहा है, लेकिन ऐसा शरीर अगर हम भगवान के सेवा में लगाए तो उसे उस शरीर को ही दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। हालांकि मृत्यु के समय हमारा शरीर बिल्कुल नाकाम रहेगा, कुछ काम के करने के लायक नहीं रहेगी, लेकिन हमारी चेतना अगर प्रगत रहेगी तो हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे, और ऐसा स्मरण करने से ही हम भगवान के धाम को प्राप्त कर पाते। तो इसी आशा के साथ हमें भक्ति में जुटना है और अथक परिश्रम करके लगे रहना है, और वो आशा हमें सदैव बनाए रखने की, भगवान मुझे उनकी चरणों का आश्रय देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ त्रुटि हो गई तो कृपा करके क्षमा कर दो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।